वर्स 59, यहाँ पे शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो सब में है, दैट वन एंटिटी विच परवेड्स एवरी थिंग इज ब्रह्म, है ना, जो हर एक चीज में है, हर जगह है, हर तरफ है, और जितनी भी उपाधियाँ हैं, उपाधियाँ याद हैं, उपाधि मतलब कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, मैं ये बुद्धि हूँ, या कोई उपाधि ये भी हो सकती है, ये शरीर बड़ा है, ये छोटा है, ये मन संतुष्ट है, ये मन घृणा से भरा है, ये सब उपाधियाँ हैं। हम जितने भी हम सेंटेंसेस बोलते हैं, ये जितनी भी उपाधियाँ हैं, ये किसकी वजह से काम करती हैं? ब्रह्म की वजह से, क्योंकि ब्रह्म है और ब्रह्म उनके अंदर है। दे आर एबल टू फंक्शन बिकॉज दे आर परमिएटेड बाय द ब्रह्म। तो जो शरीर का पैदा होना और उसकी मृत्यु होनी, और आपके मन की या बुद्धि की जो एबिलिटी है सोचने की, जो बुद्धि की एबिलिटी है निर्णय लेने की, जो पांच तत्व हैं वो भी, जो जीव है वो भी, जो ईश्वर है वो भी, ये सब क्यों पॉसिबल हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि ब्रह्म है। तो ब्रह्म इज़ द फंडामेंटल, इट इज़ द बेसिक, द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग, जिसको हम बोलते हैं कि ब्रह्म ही तत्व है या एसेंस है। तो फिर उन्होंने एग्जाम्पल में बताया कि जैसे मक्खन या घी दूध की हर बूंद में है, हर बूंद में, बिल्कुल इसी तरह ब्रह्म हर चीज़ में है। कोई भी ऐसी चीज़ है ही नहीं, कोई भी चीज़ बिना ब्रह्म के एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो जैसे हमारी आँखें दूध को देखकर उसमें मक्खन नहीं देख सकती, है ना, उसके लिए दूध का एक प्रोसेस करना पड़ेगा हमें। हम सबको पता है कि दूध को पहले उबालो, मलाई निकालो, फिर उसको जमाओ या दही करो, फिर उसको मथो, फिर वो सब पूरा प्रोसेस करने के बाद वो मक्खन निकल कर आएगा जो दूध में पहले से ही था। बिल्कुल इसी तरह से एक प्रोसेस करना पड़ेगा अगर तुम्हें ब्रह्म को देखना है या जानना है, है ना। यहाँ पे इन्होंने दिया है, अ सर्टेन प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कॉन्टम्पलेशन इज नीडेड फॉर यू टू परसीव एंड अंडरस्टैंड ब्रह्म's existence, reflection and contemplation, मतलब मनन, जो हम बोलते हैं ना, हमने सुना वो तो श्रवण हुआ, लेकिन जब हम उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे, तो रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे, यही कि अगर हमें शंकराचार्य बता रहे हैं बार बार कि तुम ही ब्रह्म हो, तुम्हारे अलावा और कोई ब्रह्म नहीं है, और ये जो पूरा जगत तुम्हें नज़र आ रहा है ये मिथ्या है, तो आपको अब इस चीज़ पर मनन करना है कि कैसे ऐसा है कि मैं ब्रह्म हूँ, और कैसे ये जगत जो मुझे एकदम सही नज़र आ रहा है, जीता जागता नज़र आ रहा है, ये मिथ्या कैसे है, इसमें मनन करना है। और फिर वो कहती हैं कि अगर तुम इसे अनुभव करना चाहते हो बिना किसी प्रोसेस के, इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दिस विदाउट द नेसेसरी प्रोसेस, इट इज़ सिंपली नॉट पॉसिबल, वो हो ही नहीं सकता, वो नहीं हो सकता। जैसे कि तुम दूध से मक्खन नहीं निकाल सकते बिना चर्निंग के, है ना, चर्निंग करना उसका ज़रूरी है। तो वो कहती हैं ऐसा तो नहीं होगा कि तुम दूध के पतीले के आगे बैठ जाओ और उसके आगे अगरबत्ती लगा के गाओ कि हे मक्खन तुम निकल जाओ बाहर, तो मक्खन तो नहीं निकलने वाला है ना। या तुम कितने भी मंत्र गा लो उसके सामने बैठ के, या तुम योगा प्राणायाम आसन कर लो उस दूध के भगोने के सामने बैठ के, वो कभी नहीं निकलेगा जब तक उसका एक प्रोसेस है दूध को निकालने, मक्खन को निकालने का। फिर है कि जैसे मक्खन पूरे दूध में मिला हुआ है, ऐसे ही ब्रह्म पूरी क्रिएशन में, पूरे अस्तित्व में फैला हुआ है, वो ही है, हर जगह वो ही है। यहाँ पे एक और सवाल आता है जो यहाँ पर नहीं है, अगर ब्रह्म हर जगह मौजूद है, ओके, तो अज्ञान कहाँ है? मैं अनम्यूट करती हूँ, सोचिए और बताइए। ब्रह्म तो हर जगह मौजूद है, और हम क्या बोलते हैं कि हम ब्रह्म को क्यों नहीं जान पा रहे? क्योंकि अज्ञान है। तो अज्ञान कहाँ पर है ये बताओ, आप लोग अनम्यूट कर सकते हो।
अज्ञान भी हम ही में है, इट्स इन द माइंड,
ओके,
इसी जीव में है, जिसमें ब्राह्मण ओनली वही है, इट्स इन द ब्राह्मण ओनली,
ओके, यस। यस, सबके आंसर सही है, पर बिंदु का टेक्निकली एकदम करेक्ट है कि ब्रह्म में ही है, क्योंकि जब हम ब्रह्म बोलते हैं तो ब्रह्म में दोनों चीजें आ जाती हैं, ज्ञान भी और अज्ञान भी, उसमें दोनों चीज हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसमें नहीं है ना, तो वो ही है। तो जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि दूध में मक्खन हर जगह है, तो दूध में पानी भी हर जगह है, हम एक तरह से तो पानी निकालते हैं, पानी एलिमेंट बाहर कर रहे हैं ना उसका, अगर हम बोले सपोज उपमा देने के लिए, अज्ञान जो है, तो अज्ञान भी पूरी जगह है और ज्ञान भी पूरी जगह है। जो ब्रह्म में हम ये नहीं कर सकते कि बस, तो वही आ गया जो डुअलिटी की हम बात करते हैं ना, हम लोगों को क्या लगता है कि एक ही चीज़ होनी चाहिए, कि अच्छाई होनी चाहिए, सब अच्छा होना चाहिए, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पोलैरिटी है, बुराई भी है ना, दोनों चीज़ हो गई। तो ऐसे ही जो ब्रह्म है उसमें ज्ञान भी है, वो ब्रह्म तो है ही, और उसमें अज्ञान भी है। तो नॉलेज एंड इग्नोरेंस बोथ आर इन द ब्रह्म ओनली, ओके, बोथ ऑफ देम, जो एग्जिस्टेंस है। अब अगर ये स्टेटमेंट सुन के किसी के दिमाग में कोई सवाल आ रहा हो तो ज़रूर पूछना या इस पे मनन करना कि दोनों ही हैं, है ना, कैसे है। फिर वो कहते हैं, केनो उपनिषद कहता है, वो जो मन से नहीं जाना जा सकता, दैट विच के नॉट बी अंडरस्टूड थ्रू द माइंड, बट दैट विच नोज द माइंड, जो माइंड उसको नहीं जान सकता लेकिन वो माइंड को जानता है, नो दैट टू बी द ब्रह्मन, वो ही ब्रह्म है। दैट विच के नॉट बी नोन बाय द माइंड इज ब्रह्मन, दैट विच सीज द आइज बट के नॉट बी सीन थ्रू द आइज इज ब्रह्मन, है ना। वो अब हम इसको बहुत सारा बढ़ा सकते हैं कि जो आँखों को देख सकता है लेकिन आँखें उसे नहीं देख सकती, जो कानों का सुन सकता है लेकिन कान उसे नहीं सुन सकते, है ना, जो जो स्किन है वो उसे टच नहीं कर सकती लेकिन स्किन का टच उससे ही जाना जाता है। तो आप कितना ही इसको बढ़ा लो, इनफाइनाइटली वी कैन से दैट, मतलब उसकी वजह से ही हर चीज़ को जाना जाता है, लेकिन जो भी चीज़ जानी जा रही है वो ब्रह्म को नहीं जान सकती। ओके, सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर। तो यहाँ पे हम फिर से वही बोलते हैं कि क्या मन ब्रह्म को जान सकता है? नहीं। क्या ये शरीर ब्रह्म को जान सकता है? नहीं। क्या ये बुद्धि ब्रह्म को जान सकती है? नहीं। तो क्या आ जाता है जब आप ये सब कुछ छोड़ देते हो? सब कुछ छोड़ने के बाद जो बचता है फिर वो ब्रह्म हो जाता है, इनसे नहीं जाना जा सकता। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने बोला है, नॉट द बॉडी, नॉट द माइंड, नॉट द चित्त, नॉट द सेंसेस, नॉट द इंटेलेक्ट, नॉट द ईगो, आई एम द एवर कॉन्शियस, एवर ब्लिसफुल, इटर्नल, ऑल परवेडिंग ट्रुथ ब्रह्मन। तो आपका जो चर्निंग है वो क्या होता है? चर्निंग ऑफ द फॉल्स। जैसे हम जब मक्खन की चर्निंग करते हैं तो हम उसके अंदर जो मक्खन का एलिमेंट निकाल रहे हैं और जो वाटर एलिमेंट है, जो पानी का तत्व है, उसको अलग कर रहे हैं ना, पानी को और सॉलिड्स को अलग कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो चर्निंग क्या होगी कि क्या नहीं है। तो क्या नहीं है वो क्या है? अज्ञान। जैसे हमने बोला कि ब्रह्म क्या है, उसमें ज्ञान अज्ञान दोनों हैं, अस्तित्व में ज्ञान अज्ञान दोनों हैं, ठीक है ना। फिर जब हम चर्निंग करेंगे तो अज्ञान अलग रह जाएगा और फिर जो बचेगा वो क्या है? वो ही ज्ञान है, वो ही ब्रह्म है, वो ही सत्य है। बाउंड्रीज आर क्रिएटेड बाय योर बॉडी माइंड, है ना, हमारी सारी बाउंड्रीज इसी की वजह से हैं। जो हम इंडिविजुअलिटी बोलते हैं, जो हम जीव बोलते हैं, किस बेसिस पे बोलते हैं? कि मैं बोलूँगी अगर सपोज मैं किसी के साथ बैठी हूँ और हम चिपक के भी बैठे हों तो भी मुझे एक आइडिया होगा कि ये मेरी बाउंड्री है ना, ये मैं हूँ और ये दूसरा है, तो हम अलग हैं। फिर हम अपनी सोच के हिसाब से, हमारे विचारों के हिसाब से, हमारे इमोशंस के हिसाब से हमें पता है मुझे अपने अनुभव हो रहे हैं, दूसरे के अनुभव अलग हैं। अनुभव कहाँ हो रहे हैं? मन में हो रहे हैं, मन को हो रहे हैं, तो फिर हम उससे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे हैं, है ना, हमारी बाउंड्रीज़ हो गई हैं बिटवीन डिफरेंट पीपल। अब उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि सपोज एक हॉल में 20 लोग सोए हुए हैं, ठीक है, अब ऐसा लगेगा जैसे कि सारे सपोज सारी 20 की 20 वो हैं, वो एक ही यूनिट है और एक लेवल पे एक यूनिट है भी, क्योंकि अगर सब सोए हुए हैं और गहरी निद्रा में हैं, लेट अस से सबको ड्रग दे दिया गया है और गहरी निद्रा में हैं, तो निद्रा में तो सब एक हैं, देर इज़ नो डिफरेंस। जैसे हम बोलते हैं साइलेंस में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, सब एक है ना। लेकिन अगर सपोज सिर्फ सोए हुए हैं तो भी, सोने में भी अगर हम बोले एक हैं, लेकिन सपोज कोई सुरेश है और एक ने रात को आके आवाज़ मारी सुरेश, तो उन 20 में से जो सुरेश होगा वो उठ जाएगा, है ना, उसको ये होगा कि हाँ मैं सुरेश हूँ। तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन हो गया, तो जो डुअलिटी है, जो माया है, उसमें डिफ्रेंसिएशन हो गया, कोई और नहीं उठेगा वहाँ पर, है ना। तो इट इज़ द माइंड दैट रिकग्नाइजेज द नेम ऑफ द बॉडी एंड एज सून एज द माइंड अवेकन्स इट गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द 19 अदर पीपल स्लीपिंग देयर, है ना। तो जैसे ही जागृत अवस्था शुरू हुई, आप उठे तो आप बाकियों से अलग हो गए। या फिर सपोज हम 20 लोग साइलेंस में बैठे हुए हैं, अगर किसी ने, साइलेंस में हम सब एक हैं, लेकिन कोई भी एक बोला अगर, तो वो बाकी के साइलेंस से अलग हो गया, है ना। जहाँ पर नाम और रूप, देखो ये बेसिक होता है, नेम एंड फॉर्म, जिससे हम सारी आइडेंटिटी करते हैं, और वो नाम और रूप ही हैं जो आपको अलग करते हैं हर उससे, अस्तित्व में आपकी एक अलग पहचान देते हैं, आइडेंटिफिकेशन देते हैं। एट द प्लेन ऑफ द सेल्फ देर इज नो आई एंड नो यू, जस्ट शिवोहम, आई एम शिवा। आई एम ऑन द नाउ 237 की फर्स्ट लाइन पे आ गई हूँ मैं इंग्लिश बुक में, आई एम शिवा। बट हेयर शिवा डज नॉट रेफर टू द फॉर्म ऑफ महादेव विद फ्लोइंग ट्रेसेस, सर्पेंट्स एंड डियर स्किन एंड सो ऑन। शिवा मीन्स द एब्सोल्यूट रियालिटी ब्रह्म। तो जब हम शिवोहम, बड़ा कॉमन है हमारे उसमें ये बोलना, उसका क्या मतलब है कि शिव मतलब कोई, शिव कोई फॉर्म नहीं, कोई भगवान नहीं, शिव मतलब ब्रह्म, अस्तित्व, वो ही। तो जब हम बोलते हैं शिव और शक्ति, तो शिव क्या है, जो अप्रकट रूप है, जो निराकार रूप है, वो है शिव, और जो साकार रूप है वो हो जाता है शक्ति। तो इसीलिए शिव और शक्ति मिलकर ही ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा ब्रह्मांड उनको मिलकर ही है। जो भी अनमैनिफेस्टेड है, जो रियल है, जो सब में अवेलेबल है, वो हो गया शिव, और जो अलग 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 हो गए रूप, वो हो गई शक्ति। तो देवी अलग हो गई, शिव अलग हो गए। अभी जो चल रहा है ना, शायद आप लोगों ने सुना होगा, जब से वो मून के ऊपर भी उन्होंने शिव शक्ति नाम दिया है ना, प्राइम मिनिस्टर ने, जहाँ पे विक्रम लैंड हुआ है, उसके ऊपर कॉन्ट्रोवर्सी भी चल रही है बड़ी, कि शिव शक्ति नाम क्यों दिया है, हिंदू नाम है, आप लोगों ने शायद सुना होगा। तो वही है, यहाँ पे शिव शक्ति का मतलब अगर देखा जाए, कोई रिलीजन से नहीं है, देर इज़ नो रिलीजन इन्वॉल्व इन इट, इट इज़ जस्ट अ सिंबल। आप यिंग यांग भी बोल सकते हो उस चीज़ को, आप मैस्कुलिन फेमिनिन भी बोल सकते हो, है ना। तो हमारा अगर पूरी क्रिएशन देखो, रिप्रोडक्शन में भी क्या चाहिए, मैस्कुलिन और फेमिनिन, है ना, दोनों चाहिए, मेल और फीमेल, तभी तो आगे प्रोड्यूस होता है। ऐसे ही क्रिएशन में, जब भी जो भी हमारा यहाँ पर ये ब्रह्मा जो भी हमें नज़र आ रहा है, उसके लिए दोनों एनर्जीज चाहिए, कौन सी, मैस्कुलिन और फेमिनिन। तो जो शिव है वो मैस्कुलिन मेल एनर्जी है, और शक्ति, और जो पार्वती है शक्ति है, वो फेमिनिन एनर्जी है। ओके, इसका ना मैंने इनफैक्ट एक वीडियो भी, हो सकता है आप लोगों ने देखा हो, लोगों ने सद्गुरु को भी ये सवाल पूछा था, किसी ने देखा वो वाला वीडियो, कि ये तो बहुत गलत बात है कि शिव शक्ति नाम क्यों रखा है, बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, कि अल्लाह नाम भी रख सकते थे और जीसस नाम भी रख सकते थे उस पॉइंट का, ये सब। तो खैर, उन्होंने ये तो क्लियरली बताया है कि शिव शक्ति और ये सब मतलब क्या होता है, इट इज़ अबाउट द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। फिर उन्होंने बोला, तुम बताओ जो स्पेस में जितने भी चीज़ें गई हैं, सपोज अपोलो, आपने प्लैनेट्स के जो नाम दिए हुए हैं, सैटर्न, वीनस, ये क्या हैं? ऑल ऑफ देम आर ग्रीक गॉड्स, ये सारे ग्रीक गॉड्स हैं। कहते उनको तो तुम क्वेश्चन नहीं करते कि ये क्या ग्रीस की मोनोपोली है क्या, सारे ग्रीक गॉड्स दिए हुए हैं, है ना। लेकिन जैसे ही कोई इंडियन कोई नाम दिया जाता है या कुछ है, उसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम सबको हो रही है कि अरे ये क्यों नाम दे दिया आपने। तो वो शिव शक्ति का मतलब रिलीजियस नहीं है, देर इज़ नथिंग रिलीजियस अबाउट इट, विच मोस्ट पीपल थिंक दैट इट इज। एक और चीज़, अभी ना रणवीर का, आप लोग बहुत सारे लोग देखते हो ना TRS क्लिप्स, तो रणवीर का एक आया हुआ है, ये स्टेम सेल थेरेपी का, किसी ने देखा है, डॉक्टर आलोक शर्मा वाला। ओके, तो ही इज़ मैं बहुत ब्रीफ में बताती हूँ, ही इज़ अ न्यूरोसर्जन एंड ये मुझे पता लगा अभी, आपको पता है स्टेम सेल थेरेपी बहुत कॉमन हो गई है अभी, और इंडिया पायोनियर है उसके अंदर स्टेम सेल थेरेपी में। मतलब ज़्यादातर यही होता है ना, हम हर चीज़ सुनते हैं कि यूएस से आ रही है और हम लोग फॉलो करते हैं उन चीज़ों को। स्ट्रेंजली इसमें सबसे पहले इंडिया में काम हुआ है, और ये है बॉम्बे में ही है उनका हॉस्पिटल है। तो देखो एक क्या होता है, एक होता है हम जो मेडिसिंस मिलती हैं हमें, है ना, पूरा फार्मा में कि हमें कोई भी बीमारी है तो हमें दवाई दी जाती है ठीक होने के लिए। दूसरा तरीका क्या होता है, सर्जरी, है ना। मतलब अगर हम एलोपैथी में देखें दो ही चीज़ें हैं कि आपको सर्जरी करके अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो हटा दी जाती है। स्टेम सेल थेरेपी क्या है कि आपके अंदर स्टेम सेल्स हैं, आप लोगों ने सुना होगा, जो हमारे बोलते हैं ना बीच में, बहुत सारे लोग अम्बिलिकल कॉर्ड्स को भी फ्रीज करवा रहे हैं या हमारी बोन मैरो में होते हैं। तो जो स्टेम सेल्स होते हैं वो हमारी पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होते हैं। तो अगर उन स्टेम सेल्स को निकाल लिया जाए और जो भी आपका एरिया जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, ओके, वहाँ पे उनको इंजेक्ट कर दिया जाए, तो वो क्या होता है, वो जो स्टेम सेल्स हैं, जो खराब सेल्स होते हैं, वो उनको रिप्लेस करके दे रिप्रोड्यूस वहीं पे, वो बिल्कुल अपना बना लेते हैं और उसी की शेप ले लेते हैं। सो दे कैन बिकम योर नर्व सेल्स, दे कैन बिकम टिश्यू सेल्स, दे कैन बिकम मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, वो कोई भी चीज़ बन सकते हैं। एक तो होता है ना कि वही चीज़ वही बनेगी, उनकी कैपेबिलिटी होती है कि वो कुछ भी बन सकते हैं। तो उन्होंने ये 15 साल पहले इन्होंने शुरू किया था ये सारा, और उसको करके अब ये हुआ है, आप लोगों ने सुना होगा ऑटिज़म बहुत ज़्यादा कॉमन है, अभी ऑटिज़म बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट आई वॉज सरप्राइज्ड, इन US एवरी 36th चाइल्ड इज़ ऑटिस्टिक, एवरी 36th चाइल्ड। इंडिया में अभी 100th है, आप सोचो हर 100वां बच्चा ऑटिस्टिक है। और अभी तक क्या था कि अगर किसी को ऑटिज़म होता है तो इट इज़ कंसिडर्ड एज कि बस अब तो ये, मतलब दे आर ट्रीटेड मेनली लाइक मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन ओनली, ओके। लेकिन इन्होंने स्टेम सेल थेरेपी की है जिसकी वजह से जो बच्चे हैं दे आर कमिंग आउट टू बी जीनियसेस। आपको पता है जो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन होते हैं उनमें उनका एक लोअर ब्रेन कम काम करता है जिसको हम सर्वाइवल ब्रेन बोलते हैं, लेकिन जो उनका हायर ब्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है। तो जैसे कि एक बच्ची है, उन्होंने तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे, जो 7 साल की है उसको ऑटिज़म था, जब उसका ऑटिज़म ठीक हुआ तो शी इज़ डूइंग इंजीनियरिंग लेवल मैथ्स, अ 7 ईयर ओल्ड। और ऐसे उन्होंने कितने एग्जाम्पल्स दिए कि ये बच्चे जिनके बारे में पता ही नहीं था, मतलब क्यों, क्योंकि आपने उनको ऑटिस्टिक मान के छोड़ दिया और आपको हो गया कि ऑटिज़म का कोई इलाज ही नहीं है। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा एक है जो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन को थेरेपी देता है, ओके, लाइक फिजियोथेरेपी, लैंग्वेज थेरेपी, मतलब एक पूरा का पूरा एक क्या बोलोगे, एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ही बना हुआ है वो सब करने के लिए। तो ऐसे उन्होंने बताया कि दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, और ये चीज़ हर फील्ड में अब हो रहा है कि आप कोई भी चीज़ अगर आपको हो, अगर आप स्टेम सेल्स थेरेपी लो तो आपकी वो चीज़ वापस से ठीक हो सकती है। मतलब आपका जो ऑर्गन खराब हो गया है वो ऑर्गन भी ठीक हो सकता है। और सबसे मज़े की बात ये है, क्योंकि इंडिया ने पायोनियर किया है, ही इज़ बीइंग थ्रेटन्ड लाइक एनीथिंग। मतलब एक होता है कि उनको सपोर्ट मिले, लोग वाह वाह ही करें कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, उनको उल्टा हो रहा है वहाँ से कि ये जो बाकी कंपनीज़ हैं और स्पेशली फार्मा वाले, क्यों अब आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर जो ऑटिस्टिक बच्चे ठीक हो रहे हैं तो जो बाकी कंपनीज़ हैं, मतलब जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है ऑटिज़म के ऊपर, उनको थ्रेट हो गया है कि कौन लैंग्वेज, सोचो अगर बच्चा ठीक हो गया, 5 साल का, 3 साल का, 6 साल के बच्चे ठीक होने लग गए तो कितना उनके लिए प्रॉब्लम है। और प्रोसेस भी इज़ ओनली सिर्फ 2 इंजेक्शन्स, पता है, कोई सर्जरी नहीं है, कुछ नहीं है, एक इंजेक्शन से वो आपका स्टेम सेल निकालते हैं और दूसरे इंजेक्शन से सिर्फ उसको डालते हैं। इट इज़ रियली अमेजिंग, आप लोग को देखना चाहिए। एक मिनट, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर समथिंग एल्स, आई अनम्यूट यू सो यू कैन ऑल्सो। तो एनी वेज, दिस वॉज जस्ट टू टेल यू अबाउट कि हमारा कितना बड़ा, मतलब इतना वो ग्रोथ हो रही है, और अभी सारी कंट्रीज से इंडिया में लोग आ रहे हैं वो ठीक कराने के लिए, इवन US, UK, हर जगह से। ही सेड ही हैज़ ट्रीटेड चिल्ड्रन फ्रॉम मोर देन 75 कंट्रीज़, ओके। तो ये तो खैर बेसिकली उनके बारे में ये बताने के लिए था। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बताई कि अब रणवीर का क्या होता है, ही ऑलवेज टेक्स एवरीथिंग टू स्पिरिचुअल, मतलब सो ही सेड कि आप तो न्यूरोसर्जन हो, तो आपने कुछ ऐसा नोटिस किया, मतलब जो बोलते हैं ना, हम यहाँ पे जैसे डिस्टिंक्शन की बात कर रहे हैं कि माइंड बॉडी से हमारी लिमिटेशन है, तो हैव यू सीन एनीथिंग डिफरेंट यू नो इन द ब्रेन स्ट्रक्चर या कुछ की, या फिर जो लोग डू यू बिलीव इन थर्ड आई, डू यू बिलीव इन यू नो मेडिटेशन एंड ऑल ऑफ दैट. तो उसने मतलब साइंटिफिक के हिसाब से बहुत अच्छा ये बताया. ही सेज एब्सोल्यूटली देर इज़ नो डाउट अबाउट इट. कहते हैं कि हर साइंटिस्ट ये जानता है कि इवेंचुअली इट इज़ ऑल वन. क्यों? और बहुत सिंपल उन्होंने समझाया. उन्होंने बताया, देखो आप कोई भी चीज़ लो, सबसे पहले लेट अस टेक द बॉडी, ठीक है. सपोज़ ये वाली बॉडी लेते हैं, इस बॉडी को आप अलग अलग पार्ट्स कर दो इसके, ठीक है. और उन पार्ट्स में आप करो कि अच्छा, अगर थोड़ा सा और नीचे जाते जाएंगे तो आएगा टिश्यूज़ अलग कर दिए, ब्लड अलग कर दिया, आपने बोन्स का स्ट्रक्चर अलग कर दिया, हेयर अलग कर दिया, है ना, कुछ कुछ जो भी 6-7 पार्ट, और पानी अलग कर दिया. अब हमारा 70-80% तो पानी होता है बॉडी के अंदर, है ना. पानी क्या है? H2O. H2O क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, करेक्ट. सो 80% ऑफ दिस बॉडी इज़ नथिंग बट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. फिर आप हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के नीचे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स हैं, है ना. अब उसके अंदर जब आप जाओगे तो क्या मिलेगा? देर इज नथिंग. इवेंचुअली अ पॉइंट कम्स व्हेन देर इज नथिंग, राइट. द सेम थिंग अगर आप हर चीज उठाते जाओ, आपने पहले आपका पानी एलिमेंट उठाया, फिर आपने आपका बोन एलिमेंट उठाया, फिर आपने ब्लड एलिमेंट उठाया, हर चीज इवेंचुअली विल लीड टू नथिंग. तो देन एट द बेसिक लेवल, एट द फंडामेंटल लेवल, ये बॉडी क्या हुई? नथिंग, है ना, कुछ भी नहीं है. देर इज़ नथिंग दैट इज़ देयर. फिर उन्होंने बोला, अच्छा आप पत्थर उठा लो एक बाहर से, अब उसमें भी यही सेम प्रोसेस करो, यू विल फाइंड नथिंग. फिर आप एक पेड़ ले लो, उसमें भी यही मिलेगा आपको. फिर आप एक प्लैनेट उठा लो कोई और, स्टारडस्ट उठा लो, यू टेक एनी थिंग, जो भी क्रिएशन है अगर आप उठाओगे, कोई भी साइंटिस्ट, हर साइंटिस्ट ये जानता है कि इवेंचुअली नथिंग इज़ देयर. So that means that at the base level there is nothing and there is oneness over there. So there is absolutely no doubt about the oneness. So from a very scientific perspective, so he said absolutely that is the way it is. And realizing that, understanding that there is oneness, there is nothingness, it actually helps you in every way. Like it has helped him even become a better surgeon, right? वो ऑल्दो वो स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, लेकिन सिर्फ दिस अंडरस्टैंडिंग हैज़ गिवन हिम दैट यू नो बेनिफिट ऑफ बिकमिंग अ बेटर डॉक्टर और बीइंग एबल टू ट्रीट हिज पेशेंट्स वेरी वेल. तो इट वाज रियली नाइस. तो अगर हम देखें हमारा रिलीजन और साइंस, वो जो होता है ना, रिलीजन बोलें स्पिरिचुअलिटी बोलें, इवेंचुअली दे कम टू द सेम कंक्लूजन ओनली, कोई डिफरेंस नहीं है. फिर से आगे जो नेक्स्ट पैराग्राफ है पेज 237 पे, उन्होंने यही बोला है कि जो शिवा के जो स्टॉन्च डिवोटीज़ हैं, है ना, वो नागा उनके जैसे ही ड्रेसअप करते हैं. वो जो हम पहले बात कर रहे थे कि वो भांग वांग पीते हैं, तो यहाँ पे उनके जैसे नागा साधुज होते हैं. तो सम एम्यूलेट हिम ओनली फिजिकली, वेर एज अदर्स लीड स्पार्टन लाइव्स परफॉर्मिंग फॉर्मिडेबली ऑस्टियर प्रैक्टिसेस, है ना. लेकिन जो कुछ लोग हैं जो सारी प्रैक्टिसेस भी करते हैं शिव की जो बताई हुई हैं, और पुराने ज़माने में वो लोग साथ में वेपनरी भी सीखते थे, मतलब शिव के वो जो होते ना त्रिशूल और ये सब रखते थे और उनको इस्तेमाल भी करना आता था. किस लिए? जो इन्वेडर्स होते हैं उनसे बचने के लिए या टेम्पल्स को बचाने के लिए वो ये काम भी करते थे. अभी समय बदल गया है, लेकिन उस समय में कॉमन था, काफ़ी कॉमन था कि जो सन्यासी लोग होते थे वो लड़ने का भी काम करते थे. सन्यासी का मतलब ये नहीं है कि आप बस बैठ जाओ चुपचाप करके और आपके ऊपर अगर कोई अटैक करे तो बस आप अटैक होने दो. नो, दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग मैसेज दैट पीपल हैव. जैसे कि उन्होंने बोला, गुरु गोबिंद सिंह जी ने, हम सबको पता है, जो खालसा बनाया था वो इसीलिए बनाया था कि जितने भी इन्वेडर्स हैं जो मुस्लिम अटैक्स हो रहे थे उससे, उस समय कंट्री को बचाने के लिए, है ना. तो दोनों चीज़ें होती हैं, एक्सटर्नल वॉर्स भी होती हैं. और इसका ना मैं एक और चीज़ बताती हूँ. गुरुजी हमेशा बोलते थे कि अगर आप देखोगे कृष्ण को, राम को, मूर्तियाँ देखो, एक हाथ से वो आशीर्वाद दे रहे हैं लेकिन राम के भी एक हाथ में धनुष बाण है और कृष्ण के भी एक हाथ में सुदर्शन चक्र है. तो आप कभी भी ये मत सोचो कि ये सन्यासी है या ये मतलब अगर सपोज आध्यात्मिक है तो बस इसका काम है चुपचाप बैठे राम भजन करे, उसको गाली दे दो, कुछ भी बोलो उसके परिवार वालों के साथ या जो भी उसके उनका कुछ भी करो, वो कुछ नहीं करेगा, उसको चुप रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं, इट्स अ कम्प्लीटली रॉन्ग आइडिया। और उन्होंने ये बोला, इस गलत आइडिया की वजह से भी एक रीज़न है कि हमारा देश क्यों इतना पिछड़ गया, बहुत ज़्यादा ये हुआ है। तभी जो गुरु गोबिंद सिंह जी आए, उन्होंने फिर ये वापस से खालसा का ये सब शुरू किया, बहुत सारे लोगों ने किया। क्यों? दिमाग में ये हो गया कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब या फिर अध्यात्म में जाने का मतलब है कि आप लड़ना छोड़ दो। उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, आपको डिफेंड करना भी आना चाहिए, आपको लड़ना भी आना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी यही बात बताई जा रही है। फिर उन्होंने बताया है, देर आर एक्सटर्नल वॉर्स टू बी वन एंड देन देर आर इंटरनल वॉर्स टू बी वन, दोनों ही होते हैं। द इनर वॉर इज वन वेन बिकम्स विक्टोरियस ओवर द माइंड बाय स्लेइंग द मॉन्स्टर्स ऑफ अटैचमेंट एंड अवर्जन, है ना। अंदर की लड़ाई क्या है कि हमें अपने जो हमें अटैचमेंट्स हैं, जो हमें राग और द्वेष हैं, उनसे हम ऊपर उठें। और ये कब हमारी अंदर की जो महाभारत है कैसे जीती जाती है, जब अज्ञान का नाश होता है। कौन से वेपन से होता है? ज्ञान से। ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होता है। अंदर की वॉर तब जीती जाती है जब जो भी ये इल्यूजन्स हैं, जो मिथ्या है, उसको असली नहीं जाना जाता, है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, वो बार बार हमें यही बता रहे हैं ना कि इस संसार को जो तुम असली समझ के बैठे हो, ये मिथ्या है। तो जब तुम जान जाओगे, मिथ्या को मिथ्या ही मानोगे, असली नहीं मानोगे, तब तुम्हारी अंदर की वॉर जीती जाएगी। जब तक तुम शरीर और मन के साथ बंधे हो, उसके साथ आइडेंटिफाइड हो, तो तुम मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे हो कि ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, मैं और मेरा, यही सारी प्रॉब्लम्स का जड़ है ना। और बॉडी और माइंड क्या है, ये आपको, यही वो उस मिराज का जन्म होता है, उनकी वजह से ही मिराज का जन्म है। तो तुमको अपनी जो फॉल्स आइडेंटिटी, फॉल्स आइडेंटिटी क्या है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, जिसको तुमने असली माना हुआ है, सबसे बड़ी यही तुम्हारी फॉल्स आइडेंटिटी है। और सोच के देखो, सोचो, 1 सेकंड में मृत्यु कब आएगी किसी को नहीं पता। जैसे ही मृत्यु आई, अभी सपोज सोचो, ये सेशन चलते चलते अभी निकले, खत्म, परिवार, ये शरीर खत्म, मन खत्म, परिवार खत्म, आपकी पोजेशंस खत्म, एवरीथिंग इज ओवर इन 1 सेकंड, है ना। और ऐसा अनकॉमन तो नहीं है, बहुत कॉमन चीज़ है, हमें पता है 1 सेकंड में खत्म हो जाता है सब कुछ, है ना। तो वो इसीलिए, वो बार बार इसीलिए बोल रहे हैं कि जान जाओ, अभी तो जान जाओ कि ये है ही नहीं तुम्हारा। सो स्टॉप बेगिंग फॉर आर्म्स ऑफ हैप्पीनेस फ्रॉम थिंग्स एंड बीइंग्स। देखो हम क्या कर रहे हैं, दूसरों से, चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, बेगी कर रहे हैं ना, एक तरह से बेगिंग ही तो है कि दूसरा हमें खुश कर दे, हमारे बच्चे हमें खुश कर दे, हमारे रिश्तेदार हमें खुश कर दें, फ्रेंड्स हमें खुश कर दें। कहते क्यों तुम भिखारी बने हुए हो, इनसे वैसे ही कुछ नहीं मिलना, ये तो पूरा इल्यूजरी वर्ल्ड है, कुछ भी नहीं मिलने वाला यहाँ पे। और फिर देखो लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ें नहीं मिलती दूसरों से जो उन्हें चाहिए थी। अगर हम बॉटम लाइन देखें तो डिप्रेशन का कारण ये ही है ना। कितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, बॉटम लाइन यही है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, हम कुछ चाहते थे जो हमें मिले, जो नहीं मिल पाया। और वो कह रही हैं इस इल्यूजरी वर्ल्ड में, मिथ्या जगत में तुम्हें कुछ मिलने वाला ही नहीं है। सफरिंग बिकम्स द डेस्टिनी व्हेन यू हैव नॉट संग द सॉन्ग ऑफ शिवोहम। अगर तुम ये नहीं जानोगे कि मैं ही शिव हूं, तो सफरिंग तो होनी ही नहीं है। देर इज नो अदर वे देन डिस्ट्रॉइंग द रेलम ऑफ मिराज एंड सीइंग द रियलिटी एज इट रियली इज, है ना। जब तक हम नहीं देखेंगे सच क्या है, तब तक कुछ नहीं होगा। ये जगत जो है मिथ्या है, यहाँ पे जितने भी जीव तुमको नजर आ रहे हैं सब झूठ हैं, सब मिथ्या हैं। अगर तुम इस मिथ्या को नहीं जान पाते इस जन्म में, तो बार बार जन्म लोगे, बार बार, है ना। और ये तो हमेशा बोलती हैं कि कोई ये भी गारंटी नहीं है कि मनुष्य जन्म ही लोगे, 84 लाख योनियां है, कोई भी ले सकते हो, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है ना। और फिर वो कहती हैं, इमेजिन बीइंग बॉर्न टाइम एंड अगेन, डैंगलिंग इन द मदर्स वूम्ब, द फीसेस एंड यूरिन स्टेन्ड एमनियोटिक फ्लूइड एंटरिंग योर माउथ। उनका तो डराने का तरीका भी बड़ा अच्छा है ना। सोचो कि वैसे ऐसा बोला जाता है ना, कहते हैं कि सबसे जो खराब टाइम होता है वो आपका जब आप वूम्ब में होते हो ना, गर्भ में, वो बहुत नर्कदायक होता है। इसका एक कबीर का भजन भी है, मुझे याद नहीं आ रहा, कबीर जी ने भी कुछ बोला हुआ है इसके बारे में। आई विल फाइंड इट आउट, इट इज़ रियली नाइस। और जो गरुड़ पुराण है हमारा, वो बोलता है कि जो माँ का गर्भ है उसने उसको एक नर्क माना है। बोलते हैं ना स्वर्ग और नर्क, कि तुमने बुरे कर्म करे हैं तो नर्क जाओगे, तो बुरे कर्म करे हैं तो वापस से मनुष्य शरीर धारण करोगे, मनुष्य शरीर धारण करने के लिए माँ के गर्भ में आना पड़ेगा, तो 9 महीने का नर्क तुमको वहां पे झेलना पड़ेगा, है ना। फिर देखो, फिर उन्होंने और गंदी तरह उसको एक्सप्लेन किया है। क्रैम्प्ड अप इन द कन्फाइंड स्पेस, द फीटस ओपन्स इट्स आईज आफ्टर 5 मंथ्स। हाउ मस्ट इट यर्न टू गेट आउट ऑफ द क्लॉस्ट्रोफोबिक सराउंडिंग, वेर एम आई स्टक, वेन विल आई बी एबल टू एमर्ज आउट ऑफ दिस कन्फाइनमेंट, एंड इफ ही डज ट्राई टू कम आउट अर्लियर, से इन द 7th or 8th month, डॉक्टर्स हैव टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग बाय मेडिकेटिंग द मदर, है ना। वो बेचारा बाहर आने को तड़प रहा है और वो नहीं आने देंगे आपको डॉक्टर्स, और बांध देंगे आपका, है ना, और मेडिसिन आपके अंदर डाल दी जाएंगी। इनफैक्ट एक शायद मैंने पहले भी शेयर किया था, एक अभी मतलब ही इज़ इन हिज 40s राइट नाउ, सम अमेरिकन आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जिसको अपना सब कुछ याद है। उसको ये भी याद है बर्थ से पहले का, मतलब जब वो मतलब पुराने जब उसमें था बॉडी में, वो भी याद है पिछला जन्म में। उसके बाद जब उसने वो शरीर छोड़ा और फिर जब वो ऊपर गया, उसको ऊपर जाना ही हम बोलेंगे एक तरह से अभी सिंपल लैंग्वेज में, और फिर जब उसको ये बर्थ लेना था वापस से, तो उसके जो भी वो डिज़ायर्स और कर्म रह गए थे जिसके लिए ही हैड टू कम बैक, तो जो भी उसको बताया गया, इनफैक्ट उसने ये भी बताया कि उसको चूज़ कराया गया कि देखो ये ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास, ये 3 मदर्स हैं, ये फैमिलीज़ हैं, कौन सी वाली फैमिली में तुम जाना चाहोगे। तो ही चोज़ अ फैमिली एंड ही डेंट वॉन्ट टू कम एट ऑल, लेकिन उसको बोला गया कि नहीं तुम्हें जाना है। और जब वो आया वूम्ब के अंदर, बिकॉज ही वॉज अवेयर, वो नहीं रह पाया, कहता आए तो स्टार्टेड हाउलिंग लाइक एनीथिंग एंड ही कॉल्ड आउट टू हिज गाइड। उसने बोला नहीं मैं नहीं रह सकता, प्लीज़ मुझे निकालो यहाँ से। कहता मैंने इतना शोर मचाया कि उन्होंने मुझे वापस निकाला, तो वो ऑब्वियसली अबॉर्शन हुआ जो मदर का है, क्योंकि वो बच्चा नहीं रह पाया वहाँ पे। फिर वो वापस गया, फिर कुछ दिन उसने आराम किया, फिर उसको बोला गया कि नहीं तुमको जाना तो पड़ेगा ही, मतलब तुम आज जाओ कल जाओ, यू हैव टू गो बैक। और फिर उसने बोला कि फिर उसको दिखाया गया, अभी उसके पास 2 ही ऑप्शंस बचे थे, ऑप्शंस भी कम हो गए थे। तो बहुत मज़ेदार है। तो फिर उसको बोला कि नहीं अब तुम इसमें चले जाओ, ये वाला। फिर उसने चूज़ किया एंड देन व्हेन ही वेंट, उन्होंने फिर उसकी अवेयरनेस को ख़त्म कर दिया, उसको बेहोश करा, जैसे वो करते हैं ना कि अगर आपको बहुत पेन होता है तो देन उसको पूरा 9 महीने बेहोश करके रखा गया ताकि उसको कुछ याद ना आए, एंड ही इज़ एबल टू स्टे देयर इन द होम, इट वॉज सो बैड। तो और फिर उसने अपने उसमें लिखा है कि हाँ, फिर उसकी जो जर्नी हुई, ऑब्वियसली जब जर्नी शुरू हुई तो ही हैड फॉरगॉटन एवरीथिंग, बट देन वेरी अर्ली, बच्चा था तभी से उसको वापस से याद आने लग गया था, एंड देन सर्टेन इंसिडेंट्स हैपन, देन ही गॉट इन टू दिस होल जर्नी, देन एट अ पर्टिकुलर टाइम उसको सब याद आ गया, एवरीथिंग ही कुड रिमेम्बर। और फिर उसने ये भी लिखा कि अगर मैं उस वाली जर्नी में रहता, मतलब जहाँ से मैंने अबॉर्ट हो गया था ना, मैं निकल गया, अगर उसमें रहता तो और अच्छी जर्नी जाती, दैट वॉज अ बेटर डिसीजन। तो ये सब बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं, है ना। तो वो यहाँ पे यही बोल रही हैं कि अभी जान जाओ, समझ जाओ, नहीं तो फिर से वही चक्कर, है ना। द वन हु डिस्कार्ड्स हिज फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस एंड एस्टैब्लिशेस इन द रियल सेल्फ बिकम्स फ्री फ्रॉम दिस बॉन्डेज ऑफ बीइंग बॉर्न अगेन एंड अगेन। द वन हु हैज रियलाइज द सेल्फ sees himself separate from the body despite being in the body, self-realization liberates you from all bondages. नहीं हो रहा? अच्छा, मैंने उल्टा कर दिया. पहले यू आर अलाउड टू अनम्यूट. ओके, अभी करो. तो मतलब पहले वो किया ही नहीं था, अब कर दिया. अभी हो रहा है? हाँ, हो गया. यस यस.
अभी जो भी लास्ट में जो बात हो रही थी ना, दवाइयों से रोक दिया जाता है. वेरी रिसेंटली, आई थिंक कल यस्टरडे नहीं, एक दिन पहले ही कोई अपना एक्सपीरियंस बता रहा था अपनी बेटी का, कि जब उसकी बेटी की डिलीवरी हुई तो जब बेबी हुआ तो उसके आसपास बहुत ज्यादा पिंक कलर था. द चाइल्ड वॉज बिल्कुल टोटली कवर्ड. तो डॉक्टर ने ये वो सब लोग बोले, तो डॉक्टर ने बोला घबराओ नहीं, तुमने इतनी ज्यादा डाइजीन खाई है जिसकी वजह से पूरी बॉडी, बच्चे के बॉडी के आसपास है ना पिंक कलर हो गया है. शी वाज टेलिंग, शी वाज टेलिंग दैट. तो कब मुझे इतना स्ट्राइक नहीं, मैंने खाली सुन के छोड़ दिया. इट वाज इन अ ग्रुप, हम लोग काफी सारे लोग थे जब वो बता रही थी. तो दिस आल्सो हैपेंस.
ये भी सच हो सकता है क्या?
क्या चीज?
ऐसे डाइजीन पीती तो पिंक कलर का बेबी हुआ.
जैसे हम अगर कुछ भी ज्यादा खाते हैं तो हमारा यूरिन का, फीसिस का कलर चेंज हो जाता है उसके हिसाब से. तो वही तो वो बोल रही है, जो वो जो एम्ब्रियोटिक फ्लूइड है बच्चे के आस पास, उसमें वही तो है, यूरिन एंड फीसिस भी तो है मदर का उसके अंदर एक तरह से. वो तो है ही, तभी तो वो बोल रही है. सोचो उसके अंदर तुम 9 महीने रहते हो फिर दोबारा आना चाहते हो.
पर बच्चे को इतनी तकलीफ होती है वूम में, वो किसने कैसे नैरेट किया होगा, कैसे समझा? हाँ. हमको तो लगता है माँ को तकलीफ होती है जब प्रेग्नेंट.
बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी चीज बोली. इनफैक्ट ना, एक कॉन्सेप्ट है कि जो लोग जान पाए हैं, जो अपनी मेमोरी में वापस जा पाए हैं, उन्होंने तो खुद ये बताया है कि इट इज़ वेरी पेनफुल. जो भी, क्योंकि क्या होता है, हम तो भूल जाते हैं ना, याद ही नहीं रहता. तो उन लोगों ने ये बिल्कुल चीज़ बताई है. और कुछ साइकिक्स ने, जैसे जो दूसरों की मेमोरी में जा सकते हैं या कोई बच्चा अभी है उसमें, उन्होंने भी यही चीज़ बताई है. और साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं बर्थ ट्रॉमा. ओके, उसका ये होता है, वो बोलते हैं कि हर बच्चा, जैसे पिछली बार मैंने बताया था ना कि इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इज समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन, मतलब हर किसी को होता ही है, वो होना ही है. बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि आप इतने पेनफुली बाहर निकलते हो, चाहे आप नॉर्मल तरीके से बाहर आओ, चाहे आप नॉर्मल, मतलब आपको वो यूट्रस करके सर्जरी उससे निकाला जाए, वॉट एवर मे बी द केस, बट इट इज़ पेनफुल फॉर द चाइल्ड. तो जो चाइल्ड, मतलब हर बच्चा उस प्रोसेस से जाता ही है. अब हमें पता नहीं होता इन चीज़ों का, क्यों नहीं पता होता? क्योंकि हर किसी ने गया है. अगर हमारी प्रॉब्लम्स भी हैं, वो हर किसी को प्रॉब्लम है, और जो चीज़ हर किसी को होती है तो हमें लगता है ये सब चीज़ें तो नॉर्मल हैं. बट द चाइल्ड डज गो थ्रू दैट पेन. जितने भी, मतलब अंडर अ स्पिरिचुअल ट्रेनिंग जो आपकी होती थी, उसमें जो पूरी आपको दिया जाता है ना, पूरा अंडरस्टैंडिंग के साथ जब आप कोई ट्रेनिंग करते हो, वो एक अलग ही होती है. तो वो जो शक्ति होती है, क्योंकि देन यू आर नॉट हाफ हार्टेड ओवर देयर, यू आर कम्प्लीटली देयर. सो इवन वेन यू आर फाइटिंग एज अ वॉरियर, यू आर नॉट कि पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ क्या है, 100% यू आर गिविंग टू वॉट एवर वर्क दैट यू आर डूइंग. तो उससे जो एनर्जी आती है, तो वही जो नागा साधु की बात कर रहे हो, हाँ, तो वो यही बोल रहे हैं कि जो हम वही कर रहे थे ना, कि कुछ लोग हैं हु फॉलो एवरी थिंग, कि हाँ हमें प्रोटेक्ट भी करना है और डिफेंड भी करना है. और ये तो बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे बहुत सही लगता है कि कहीं ना कहीं सबके दिमाग में ये रहता है कि अगर आप स्पिरिचुअल हो, अगर आध्यात्मिक हो, तो मतलब बस चुपचाप हो, मतलब आपको कोई कुछ भी बोले करे, मतलब आप तो एकदम डोसाइल हो, गाय हो, यू नो, मतलब इट्स टोटली टोटली द डिफरेंट वे एक्चुअली. यस, इट इज़ नॉट अबाउट बॉडी माइंड, बट डेफिनेटली एट द सेम टाइम द बॉडी माइंड ऑल्सो इज इम्पॉर्टेंट, राइट? दैट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, सो यू वुड प्रोटेक्ट दैट इंस्ट्रूमेंट. And you would also protect others' instruments. So you may do it either for yourself or to defend other people. तो अब जैसे ना, और क्या एक और पता है क्या हुआ है, जैसे सपोज ये मैंने योगानंदा जी की जो बाइबल पे, उन्होंने बाइबल पे भी पूरी कॉमेंट्री की हुई है, जैसे भगवद्गीता पे है ना, सेम थिंग इज़ ऑन बाइबल. तो उन्होंने वहाँ पे शेयर किया हुआ है कि एक बार एक इंसिडेंट है उसमें कि एक चर्च में जाके, या जो भी टेम्पल्स, अब तो चर्च नहीं होती थी, जो भी टेम्पल्स होते थे, कि कि जीसस ने जाके कोड़ा लेके लोगों की पिटाई की थी वहाँ पे, बहुत सारे लोग कुछ गलत चीज़ें बोल रहे थे और कर रहे थे, जो कि एक्चुअली बाइबल में उन्होंने उस चीज़ को निकाल दिया है इन द सेंस उसका इंटरप्रिटेशन, बिकॉज दे वॉन्ट टू शो कि अरे वो तो अहिंसक थे, मतलब एक होता ना एक आप इमेज बनाना चाह रहे हो, तो एनी थिंग एनी इंसिडेंट दैट हैज़ हैपेंड विच इज़ नॉट गोइंग विद इट दे विल जस्ट रिमूव इट. तो एक हमें ये भी एक इमेज दे दी गई है, जबकि अगर आप कंपेरेटिवली देखोगे जो हमारे जितने भी भगवान हैं उन सब ने लड़ाइयाँ की हैं, सब लड़े हैं है कि नहीं, और हमारी देवी माता तो लड़ती रहती हैं है कि नहीं हर समय, तो
ऑलवेज रेडी.
तो और उस हिसाब से एक और समझने वाली बात है ये ना, ओशो ने एक्सप्लेन किया था मुझे बहुत सही लगा, अगर हम देखें उसका रीजन क्या है, देखो सॉरी गो अहेड जैसे जो क्रिश्चियनिटी है अगर हम देखें इसमें कुछ ऊपर नीचे की बात नहीं है, इट इज ओनली 2000 ईयर्स ओल्ड राइट, इट इज स्टिल डिवेलपिंग. तो और एक अगर हम देखें जो पुराने हैं, चाहे वो आप हिंदू ले लो ग्रीक का ले लो, जो पुरानी सिविलाइजेशंस है विच आर रियली ओल्ड, सो दैट सिविलाइजेशंस दे हैव सीन द होल ऑफ इट, सो देन दे हैव कवर्ड, मतलब उनमें डेप्थ कहीं ज़्यादा है, तो हम लोग नहीं घबराते हैं. अब एक और चीज़ है, आप लोगों को पता होगा कि क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं कि जीसस वाज मतलब सिंगल है ना, लेकिन जो जो बुक्स बाद में निकली हैं जैक जीसस लिव्ड इन इंडिया एंड ऑल ऑफ दैट विच क्लियरली सेज दैट ही हैड मैरिड एंड ही हैड चिल्ड्रन, बट दे वॉन्ट टू प्रोजेक्ट एन इमेज ऑफ जीजस की ही वॉज अ सेलिब्रेट करेक्ट. तो आप एक इमेज बना लेते हो और फिर आपको वही लोगों को मासेस को बेसिकली कंट्रोल करने के लिए, और प्रॉब्लम क्या होती है मासेस भी सोचने लगते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए बिकॉज यू वॉन्ट टू फॉलो दैट है ना, अगर आपको गुरु को फॉलो करना ही हुआ है तो वही इमेज है, तो ये बहुत गड़बड़ है यहाँ पे इन चीज़ों का.
You're absolutely right, Monica. Christianity में तो बाइबल जो है क्रिश्चियन ने क्राइस्ट ने जब अपना शरीर छोड़ दिया मींस व्हेन जो उसके बाद तो इंडिया आ गए थे जैसे बुक्स से पता चलता है, पर आफ्टर रिसरेक्शन व्हेन ही वेंट अवे उसके 3 साल बाद बाइबल आई जिसमें उन्होंने बहुत सारा कंडम किया था अपने हिसाब से उसको बनाया.
करेक्ट करेक्ट.
तभी तो जो एक्चुअल व्यूज में जो लिखी हुई है बाइबल विच इज रियली में जो बाइबल है, शिवी वॉज टेलिंग दिस इन्फॉर्मेशन आई गॉट फ्रॉम शिवी कि ज्यूज जो है वो बहुत कम पैसे में कुछ कुछ मतलब 10 रुपए में 2 रुपए में ऐसे ही दे वांट टू सेल दैट बाइबल सो दैट पीपल शुड नो कि दिस इज एक्चुअल बाइबल.
राइट.
जो हम जो अभी जो बाकी जो क्रिश्चियन जो बाइबल पढ़ते हैं दैट इज नॉट एक्चुअल बाइबल
क्योंकि वो चीजें निकाल दी गई हैं जो प्रॉपर रखा ही नहीं गया है कि आप एक इमेज क्या देना चाहते हैं
अपने हिसाब से. हां
करेक्ट करेक्ट. तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं.
क्राइस्ट तो इन लोगों के साथ आगे 3 या 4 साल रहे. ही लेफ्ट व्हेन ही वाज 14 इयर्स ओल्ड.
Correct.
And he went back when he was 28 years old or 32 में तो उन्होंने अपना शरीर ही छोड़ दिया.
बिल्कुल बिल्कुल.
बहुत कम समय रहे हैं.
और जब हम इनको समझने जब क्या होता है जब आप जानने लगते हो वही होता है खुद का जब अनुभव होता है तो ये चीजें और क्लियर होने लगती हैं आपको फिर उनका लॉजिक भी समझ में आने.
मुझे तो एक क्रिश्चियनिटी का फंडा समझ में नहीं आता है कि तुमने एक बंदे को क्रूसीफाई कर दिया अब उसकी तुम पूजा कर रहे हो और उसकी पूजा भी तुम उसी रूप में करते हो जैसे तुमने क्रूसीफाई किया.
करेक्ट करेक्ट.
आई डोंट अंडरस्टैंड दैट.
बस वही है ना एक चीज जो मार्केट हो गई है एक कॉन्सेप्ट बन गया है फिर उसको चेंज करना बहुत मुश्किल काम है. देन यू जस्ट हैव टू वर्क अराउंड इट दैट इज द प्रॉब्लम. और सिर्फ क्रिश्चियनिटी क्या मतलब कोई भी चीज़ आप ले लो जहाँ पे भी अब रिचुअल्स या जो चीज़ ज़्यादा लोगों में मासेस में चली गई है उसको आपको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है. तो इसलिए खैर बेस्ट तो यही है कि आप अपनी जर्नी करो खुद को जान लो समझ लो. अब दूसरों ने क्या किया नहीं किया ठीक है चलो यू नो दैट इज नॉट आवर थिंग इट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड.
यस यस.
ओके. नीदर ग्रॉस नॉर सटल नीदर शॉर्ट नॉर लॉन्ग बर्थलेस एंड चेंजलेस विदाउट फॉर्म विदाउट एनी गुनाज विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स कलर और क्रीड नो दैट टू बी ब्रह्म है ना. ये क्या है कोई उसमें गुण है ही नहीं कोई भी गुण नहीं है. और फिर हम क्या बोलते हैं बाद में कि सारे गुण उसी के ही गुण हैं लेकिन वो जो है प्योर फॉर्म में उसका कोई गुण नहीं है, है ना। तभी तो हम निराकार बोलते हैं, क्वालिटी लेस बोलते हैं, एट्रीब्यूट लेस बोलते हैं। ना लंबा है, ना छोटा है, ना उसको जन्मता है, ना मरता है, ना बदलता है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। अब फिर वो कहते हैं यहाँ पे देखो, उन्होंने ये तो खैर अभी ऐसे ही समझाने के लिए बोला है, नो दैट टू बी ब्रह्म और नो दिस टू बी ब्रह्म। देखो दैट है कि दिस है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला, जैसे हम बोलते हैं ना हर चीज़ में ये या वो, जैसे मैं बोलूँ ये लैपटॉप तो मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैं बोलूँगी ये लैपटॉप, एक लैपटॉप कमरे में मैं पड़ा हुआ है तो मैं बोलूँगी वो वाला लैपटॉप, है ना। तो ये और वो, या मैं बोलूँगी ये खिड़की, मुझे सामने खिड़की नज़र आ रही है, ये खिड़की में चिड़िया बैठी है, या वो खिड़की में चिड़िया बैठी है। तो जो भी हमारे पास होता है उसको हम बोलते हैं ये, मतलब दिस, और जो भी थोड़ा दूर होता है रिलेटिव, इट इज़ ऑल रिलेटिव, है ना, तो हम बोलते हैं वो, मतलब दैट, करेक्ट। तो वो यहाँ पे पूछ रही हैं कि ब्रह्म को तुम क्या बोलोगे, ये बोलोगे कि वो बोलोगे, दिस है कि दैट है। ओके जैसे कि बॉडी को तुम ये बोलते हो, तुम कभी ये नहीं बोलते वो शरीर, कभी बोलते हो, कभी नहीं बोलोगे वो शरीर, ये शरीर, है ना, दिस बॉडी, बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू यू। सो इज ब्रह्म क्लोज और अफार, उनका सवाल ये है ब्रह्म कहाँ है, ये है कि वो है। और फिर उन्होंने आगे जवाब दिया है, दोनों ही नहीं है, न ये है न वो है, न पास है न दूर है क्योंकि वो ही है ना। क्योंकि अगर हम कोई कॉन्सेप्ट ये वो डिस्टेंस की बात करते हैं तो उसका मतलब वो ऑब्जेक्ट है ना, डायमेंशन ऑफ स्पेस है, स्पेस में एक ऑब्जेक्ट होता है, तो हम बोलते हैं ये वो पास दूर, लेकिन वो तो है ही नहीं। ब्रह्म इज ट्रांसेंडेंट टू स्पेस एंड टाइम, ना वो समय में है ना वो स्थान में है, इट इज़ फॉर्मलेस एट्रीब्यूटलेस। तो जो संस्कृत वर्ड होता है वो क्या होता है, तत्। तत् का मतलब नीदर दिस नॉर दैट, इट मीन्स एज इट इज, जो है बस, जो है एज इट इज। दिस इज प्योर वेदांतिक नॉलेज, आई एम ऑन पेज 240 फर्स्ट पैराग्राफ। दिस इज प्योर वेदांतिक नॉलेज, इट टॉक्स ओनली अबाउट ब्रह्म, नथिंग एल्स बट ब्रह्म। सिर्फ यहाँ पे ब्रह्म की ही बात हो रही है और उसको समझने के लिए एक बहुत तेज बुद्धि की ज़रूरत है, और अगर समझ में नहीं आता तो ज्ञान को संशय मत करो, ज्ञान को डाउट मत करो कि नॉलेज सही है कि नहीं है, ये मत सोचो, अपनी बुद्धि पे संशय करो कि मेरी बुद्धि सही है कि नहीं है, है ना। हमारा ज़्यादातर ये होता है, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, पता नहीं सही बोला भी जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो यहाँ पे वो क्लियर बता रही हैं कि ज्ञान पे संशय मत करो, अपनी बुद्धि पे संशय करो, है ना, ये मत सोचो, डोंट सस्पेक्ट द सगेसिटी ऑफ ईदर द सोफिस्ट शंकराचार्य और द एक्सपोजिटर आनंद मूर्ति गुरु माँ। वो अपने को भी ला रही हैं, ना शंकराचार्य पे शक करो, ना मुझ पर शक करो। इफ़ यू फेल टू कॉम्प्रिहेंड, नो दैट द फॉल्ट लाइज नो वेयर एल्स बट इन योर इंटेलेक्ट, एंड देन टेक एफर्ट्स टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम, है ना। ये समझो कि मेरी बुद्धि अभी इसको समझने लायक नहीं हुई है, और फिर वो करो कि कैसे मेरी बुद्धि तेज होगी। तो ये तो छोटा सा ही था हमारा वर्स 60, तो 61 भी कर लेते हैं, ठीक है। ऑल्दो वर्स 61 बड़ा है पर रेपिटेशन ही है तो हो जाएगा। अब वर्स 61 में वो कह रहे हैं कि जो हर चीज़ को प्रकाश देता है, इंक्लूडिंग द सन, है ना, जो सूर्य को भी प्रकाश देता है, लेकिन जो किसी और से प्रकाशित नहीं होता, जो दूसरों को प्रकाश देता है लेकिन जिससे वो किसी से भी प्रकाशित नहीं होता, वो है ब्रह्म। जैसे कि सूरज जो है वो हर चीज़ को लाइट देता है, लेकिन क्या सूरज को हम लाइट दिखा सकते हैं? क्या हम सोच सकते हैं कि मोमबत्ती से ले जाके हम सूरज को ढूंढ लेंगे, या टॉर्च लाइट लेके, या इवन फ्लैश लाइट ले लें बड़ी सी? नहीं ना, सूरज से ही सारी रोशनी आ रही है, सूरज खुद से प्रकाशित है, ये पहला स्टेप है। दूसरा वो क्या बोल रहे हैं कि सूरज को भी प्रकाश कहाँ से आ रहा है? क्या सूरज स्वयं प्रकाशित है? हमने अभी तक जितना जाना है वो ये है कि हम सूरज की रोशनी से जितनी भी रोशनी है वो सूरज की रोशनी है और सूरज स्वप्रकाशित है, लेकिन हम और पीछे जाएं तो सूरज भी स्वप्रकाशित नहीं है, वो भी किसी और की रोशनी से प्रकाशित हो रहा है। ओके, सूरज को भी हम हाईएस्ट नहीं बोल सकते हायरार्किकल में कि सूरज ही है। क्यों? क्योंकि लिमिटेड है, सूरज भी लिमिटेड है स्पेस में, इट इज इनर्ट। ओनली दैट विच मेक्स इट पॉसिबल टू नो एवरीथिंग, दैट हुज लाइट इनेबल्स ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन टू बी सेल्फ ल्यूमिनेसेंट, नो दैट टू बी ब्रह्म। जो सूरज को भी प्रकाशित कर रहा है ना, जिससे हर कुछ जाना जाता है। हम बोल रहे थे ना एक बार पिछले, हमने उसमें किया था, क्या है जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है ना, आत्मन, मैं, ब्रह्मन, वही। तो वही ब्रह्मन है, यहाँ पे वही बात है। जैसे कि दिन में हर चीज़ क्लियरली नज़र आती है, लेकिन रात में या तो हम चांद की रोशनी में देखते हैं या तारों की रोशनी में देखते हैं या फिर हम अपना लैम्प या टॉर्च इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें उस टॉर्च, कैंडल या लैम्प की दिन में ज़रूरत नहीं होती है ना, कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे ही अगर हमारा चैतन्य, हम अगर जगे हुए हैं, हम अपने ब्रह्म को जानते हैं, तो उससे ही सब प्रकाशित हो जाता है, फिर हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। फिर वो कहते हैं कि जो बाहर का अंधकार है, एक्सटर्नल डार्कनेस, वो तो चांद या सूरज की रोशनी से हमारा मिट जाएगा या फिर रात में टॉर्च या हमारी बल्ब से भी मिट जाएगा, लेकिन जो अंदर का अंधकार है, हमारे अंदर जो अंधकार है, वो कैसे मिटेगा? क्या बाहर की रोशनी इस अंदर के अंधकार को मिटा सकती है? नहीं। तो क्या मिटाता है? गुरु ज्ञान, है ना, ज्ञान जो मिलेगा वो ही मिटा सकता है। तो गुरु ही आपके अज्ञान के अंधकार को मिटाएगा, किससे? विद द लाइट ऑफ ज्ञान। और जब वो लाइट तुम्हें मिलेगी, तब तुम्हारी बुद्धि चमकेगी और तब तुम ये जानोगे कि मैं ही वो ब्रह्म हूँ। आई एम द सेल्फ इल्यूमिनेटिंग एवर कॉन्शियस ब्रह्म। हमारी जो मन और बुद्धि है, ये इस कॉन्शियसनेस, इस अवेयरनेस, इस ब्रह्म की रोशनी से ही काम करती है। मन खुश है या दुखी है ये कौन जानता है? मैं जानता हूँ। बुद्धि समझ रही है या नहीं समझ रही ये कौन जानता है? मैं जानता हूँ। आई नो बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, बट हाउ डू आई नो आई, है ना, मैं मन को जान लूँ, शरीर को जान लूँ, बुद्धि को जान लूँ, लेकिन मैं खुद को कैसे जानूँ? तो खुद को खुद से ही जाना जाता है। ये भी बताया ना आगे, सेल्फ इज़ नोन बाय द सेल्फ, इट डजंट नीड एनीथिंग टू नो इट सेल्फ। और फिर हमने ये भी पहले भी किया था कि नोन भी गलत शब्द है ना, लैंग्वेज का यूज़ है। आप सिर्फ जान भी नहीं सकते, आप सिर्फ हो सकते हो। यू कैन ओनली बी इट, यू कैन नॉट इवन नो इट। क्योंकि नोइंग कहाँ आता है? नोइंग का मतलब है बुद्धि की ज़रूरत है। नो वर्ड का अगर है, कुछ जानने के लिए बुद्धि चाहिए ना, और वो तो बुद्धि भी नहीं है, तो बुद्धि से भी नहीं जाना जाता, सिर्फ हुआ जाता है। रियलाइजेशन ऑफ दिस वेरिटेबल ट्रुथ लिबरेट्स यू, फ्रीज यू ऑफ ऑल अटैचमेंट्स। जब तुम ये जानते हो कि मैं कौन हूं, उसी समय सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हो। मास्टर तुम्हें गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, लेकिन ये शिष्य का काम है कि जो अपने उसके अटैचमेंट्स हैं, जो राग द्वेष हैं, उनके दानव को मारना, टू स्ले द मॉन्स्टर ऑफ अटैचमेंट। अब यहाँ पे इन्होंने दिया है, हम सबको पता है कृष्ण का नाम मोहन भी है ना, बहुत लोग कॉमनली, हमारे बहुत सारे भजनों में भी है ना, मोहन मोहन प्यारे। तो मोहन का क्या मतलब है? मोह, मोह तो सबको पता है मतलब अटैचमेंट, राग, और हन, हन का मतलब है मारना। तो जो मोह को मारे वो है मोहन, है ना। और वो कहती हैं कि तुम सब में ये पॉसिबिलिटी है, ये पोटेंशियल है कि तुम मोहन बन सको, मोहन को पूजो ही मत, मोहन के गीत ही मत गाओ, तुम मोहन बन जाओ, है ना। कैसे बनोगे मोहन? अपने राग को मारकर। अब भक्ति के मार्ग पर जो भक्ति है, मोहन है कृष्ण का एक एक्सटर्नल फॉर्म, है ना, एक एक्सटर्नल फॉर्म है कृष्ण भी। भक्ति में दो होते हैं, देखो भक्ति में द्वैत रहता है। नॉर्मली जो भक्ति मार्ग है उसमें द्वैत है, मैं हूँ और मेरा इष्ट है, मैं हूँ और कृष्ण है, मैं हूँ और शिव है, हम अलग अलग हैं, है ना। एज लॉन्ग एज कृष्णा इज सीन एज एन एक्सटर्नल फॉर्म, नो दैट इग्नोरेंस स्टिल एग्जिस्ट्स। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि जब तक तुम्हें कृष्ण अपने से अलग नजर आते हैं, तब तक जानो कि अज्ञान बाकी है ना। क्योंकि फाइनल स्टेप क्या होता है, जब तुम ही कृष्ण बन जाते हो। तो मैं हमेशा बताती हूँ ना कि जो हमारा मीरा का सब बोलते हैं कि जब मीरा कृष्ण के उसमें समा गई, जो लोगों ने बोला कि जो मीरा की डेथ हुई तो वो मंदिर में गई और कृष्ण की मूर्ति में समा गई, है ना, ये उनका एंड में बताया गया। और सिर्फ फूल मिले वहाँ पे, ये सिर्फ सिंबॉलिक है, ऐसा नहीं है कि कोई यू नो बॉडी मूर्ति में समा गई होगी, देर इज नथिंग लाइक दैट। इट इज़ जस्ट अ सिंबॉलिक वे ऑफ सेइंग कि शी ओनली बिकेम द कृष्णा, शी बिकेम द कृष्णा, दैट इज द फाइनल, दैट इज द हाईएस्ट भक्ति, दैट यू बिकम योर लविंग डेटी, जिससे भी आपको प्रेम है, आप वो ही हो जाओ। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि स्वामी सर्वप्रियानंद हमेशा बताते हैं एक चीज़ कि रामकृष्ण मठ में जब आपकी दीक्षा होती है तो आपको मंत्र दिया जाता है। और मंत्र ऐसा नहीं है कि एक ही मंत्र सबको दिया जाता है, जो भी आपको जिससे प्रेम हो, किसी को कृष्ण से है, किसी को शिव से है, किसी को राम से है, किसी को देवी से है, तो जो भी आपका होगा आपको वो दे दिया जाता है। और जब आपको उस जो भी आपका रूप है, जिस रूप की आप पूजा कर रहे हो, उसके दर्शन हो जाते हैं, जैसे आपको कृष्ण के दर्शन हो गए, तो अभी कोई सोचेगा अरे कृष्ण को दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन हो गए, कहानी खत्म हो गई। नहीं, वो बोलते हैं वहाँ से अब आपकी यात्रा शुरू होती है। जब लोग आके रिपोर्ट करते हैं, ये हो जाता है कि हाँ इसे कृष्ण के दर्शन हो गए या देवी के दर्शन हो गए, फिर आपकी वहाँ से अद्वैत साधना शुरू होती है। क्योंकि अभी तक क्या है, जैसे इन्होंने यहाँ पे बोला कि आपने उसको अलग माना है ना, कि कृष्ण अलग है और मैं अलग हूँ। अगर हम देखें रामकृष्ण परमहंस की लाइफ में भी यही हुआ था, उनके लिए माँ थी, है ना, काली माँ, वो उनको माँ था, लेकिन वो अलग थे, माँ अलग थी, वो अलग थे। तो जब तोतापुरी जी आए और उन्होंने उनको साधना कराई, सो ही सेड यू हैव टू किल द मदर, यू हैव टू स्ले द मदर, उनको मार देना है तुम्हें। दैट वॉज हिज फाइनल साधना जो उसमें कराई गई थी, है ना। तो उसी की बात हो रही है कि द फाइनल स्टेप इज दैट यू बिकम वन विद द डेटी, देर इज नो डिफरेंस। द डे कृष्णा सीम्स योर ओन सेल्फ, दैट इज द डॉन ऑफ ज्ञान, उस दिन जानो कि ज्ञान हुआ है। ये एक ना उन्होंने आगे स्टोरी बताई है, एक उड़िया बाबा, आप लोगों ने शायद सुना होगा, उड़िया बाबा बहुत फेमस थे, जैसे नीम करोली बाबा हैं और बहुत सारे ऐसे उड़िया बाबा भी होते थे, वृंदावन में रहते थे। तो वो जो उड़िया बाबा थे वो कभी भी कृष्ण मंदिर में नहीं जाते थे, बांके बिहारी मंदिर आपको पता है बहुत फेमस है वृंदावन का, तो वहाँ के, और उड़िया बाबा भी बड़े फेमस थे। तो जो पंडित होते थे वो बोलते थे कि अरे ये उड़िया बाबा ना तुम्हारे कभी कृष्ण के दर्शन को ही नहीं आते हैं, कैसे हैं। तो उनको लगता था कि बड़े बेकार हैं, कि कृष्ण का दर्शन करने नहीं आते। तो जो उड़िया बाबा के फॉलोअर्स थे उनको ये लोग पंडित जो हैं बोलते होंगे, सुनाते होंगे। तो वो जो डिसाइपल्स थे वो आके उड़िया बाबा को बोलते थे कि अरे बाबा क्या आप क्यों नहीं जाते हो कृष्ण को वो करने। तो बोलते थे कुछ नहीं, वो अपनी मस्ती में है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको तो पता है कि मैं ही वो हूँ, है ना, वो उस स्टेज पे पहुँच गए हैं। तो एक दिन उन्होंने बोला कि अच्छा चलो तुम इतना बोलते हो, चलो आज कृष्ण को दर्शन दे आते हैं। सो ही सेड चलो आज कृष्ण को दर्शन दे आते हैं, नॉट इवन कि मैं कृष्ण के दर्शन करने जाता हूँ, पर मैं कृष्ण को दर्शन दे आता हूँ। तो खैर फॉलोअर्स वर वेरी हैप्पी कि चलो एटलीस्ट चल तो रहे हैं ना, मतलब जा तो रहे हैं, वो पंडित खुश हो जाएंगे। फिर वो गए वहाँ पे और सामने खड़े रहे, बस गए और खड़े रहे मूर्ति के सामने, और खड़े होके थोड़ी देर फिर वापस बाहर आ गए। अब देखो जिसकी एक्सपेक्टेशन होती है वो कभी मीट नहीं होती, है ना। फिर पंडितों ने बोलना शुरू किया, अरे आए नमस्कार भी नहीं किया, झुके भी नहीं पहले था कि आए नहीं, अब आ गए तो नमस्कार नहीं किया, झुके भी नहीं। तो वो बोलते हैं अरे मैं जाके सामने खड़ा रहा, उसने भी तो मुझे नमस्कार नहीं किया. सो नाउ नॉर्मल पीपल इट विल नॉट अंडरस्टैंड, राइट? इट विल फील एज इफ ही इज़ वेरी एरोगेंट, एज इफ यू नो ही डज नॉट बिलीव इन गॉड, या लोग यही समझेंगे, है ना, जो क्योंकि नहीं है. पर वो किसी और स्टेट में है, ही इज सीइंग नो डिफरेंस बिटवीन हिम एंड कृष्णा, सो देर इज़ नो नीड फॉर हिम टू डू एनी ऑफ दैट. सो ऐसा है. लेकिन पता है इससे ना मुझे, सॉरी मैं वापस घूम फिर के ना, साइकोलॉजी ज़रूर बीच में आ जाती है. ये जैसे मैंने बोला, आप देखो जब भी हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस मीट करना चाहते हैं ना, चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, बॉस हो, नेबर्स हो, तो देर इज़ नो एंड टू इट. ओके, आप सोचते हो कि अरे मैं उनके लिए ये कर दूँ वो खुश हो जाएंगे. आप जैसे ही वो करोगे द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन विल अराइज. अब देख लो ऐसा ही होता है, जो आपने किया दैट विल बी टेकन फॉर ग्रांटेड. अब ये तो आपको करना ही है, ये तो उनका हक हो गया, है ना, वो हो गया. अभी नेक्स्ट चीज़ कि अब ये नहीं करते, है ना. कभी कोई बोलेगा अरे उसने तो मुझे, मैं बीमार थी उसने तो मुझे फ़ोन ही नहीं किया, है ना. चलो आपने सोचा यार वो बुरा मानेगी, मैं फ़ोन कर लेती हूँ, तुम बीमार हो ठीक तो हो. फिर आप सुनोगे वो बोल रही थी अरे उसने फ़ोन ही करा बस, ये भी नहीं, ये नहीं पूछा, ये नहीं पूछा कि मैं कुछ बना के भेज दूँ, कुछ बना के ले आऊँ, है ना. चलो आप सोचोगे अगली बार मैं बना के ले जाती हूँ, थोड़ा सूप दे आती हूँ, बीमार है, या खिचड़ी दे आती हूँ. तो बोलेंगे लेकिन वो सूप लाई थी पर अच्छा नहीं था बिल्कुल भी. या टमाटर का सूप ले आई थी, मुझे तो टमाटर पसंद ही नहीं है. मतलब यू ऑब्जर्व ऑल दीज थिंग्स, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी की एक्सपेक्टेशंस कभी नहीं कंप्लीट कर सकते, इट इज़ इम्पॉसिबल. जैसे वो है ना कि पहले तो वो रोए जा रहे हैं कि उड़िया बाबा आते ही नहीं है, अब चले गए तो ये है कि आए तो झुके नहीं उनके सामने. ये हमारा ह्यूमन माइंड ऐसा ही है. तो आपको जो सही लगता है आपके हिसाब से वो करो, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने मत जाओ, है ना. कोई एंड नहीं है. डोंट थिंक यू विल मेक अदर्स हैप्पी बाय मीटिंग देयर एक्सपेक्टेशंस. नो यू विल नॉट. यू मीट 10, 100 मोर विल अराइज. ओके, तो उन्होंने क्या बताया, टू एन एनलाइटेंड मास्टर आत्मन इज कृष्णा, आत्मन इज शिवा, आत्मन इज विष्णु, आत्मन इज एवरीवेयर. Such lofty knowledge, such grand heights of wisdom, fly if you can with its wings. है ना. तो जो जान गया है उसके लिए सब वो ही है और सब कुछ. और ये नहीं कि वो शरीर, सारे शरीर, उसको जाके अगर पूजना भी है, नमस्कार भी करना है, तो कृष्ण की मूर्ति के आगे जाके पैर हाथ झुकाने की ज़रूरत नहीं है. वो एक भिखारी को भी झुका सकता है, उसमें भी कृष्ण को देखेगा. वो एक पत्थर में भी कृष्ण को देखेगा, वो एक पेड़ में भी कृष्ण को देखेगा. और यही रीज़न है हमारे जो हिंदू धर्म में जैसे है ना कि हम हर चीज़ को भगवान बना देते हैं. हमारे यहाँ पेड़ भी भगवान है, हमारे यहाँ पत्थर भी भगवान है, हमारे यहाँ कुछ भी भगवान हो सकता है. उसके पीछे मान्यता यही है, उसका जो नॉलेज है वो यही है कि भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, उस ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं. तो आपको एक में क्यों देखना है, हर चीज़ में नज़र आएगा, हर चीज़ में वही है, है ना. अब यहाँ पे क्या होता है, कोई भी चीज़ बताओ ना, साथ में एक ऑपोजिट चीज़ आ जाती है. ओके, अब जैसे अगर आप सोचो बोलो कि हर कोई वो ही है, ब्रह्म ही है, ओके, तो एक और कोई सोचेगा अच्छा फिर तो किसी ने आपका कोई बुरा कर रहा था तो आपने उनको नमस्कार क्यों नहीं किया, आपने उनको एज अ ब्रह्म क्यों ट्रीट नहीं किया, है ना. तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन आ जाता है. जैसे कि एक सांप में भी भगवान है, है ना. सांप भी वही है, आत्मन ही है, ब्रह्मन ही है. पर क्या आप सांप को गले लगा लोगे जाके, आपके घर में सांप आएगा तो उसको गले तो नहीं लगाओगे ना, आप उससे दूर, आप उससे बचोगे भी. क्यों? अब यहाँ पे ये भी एक बुद्धि का काम होता है, डिफ्रेंसिएशन करना. अंदर से मैं जानता हूँ कि वो भी ब्रह्म है, वो भी आत्मन है, वो भी कृष्ण है, बट अभी फॉर्म में, जब डुअलिटी में, वो सांप है और मैं मनुष्य हूँ. अगर मैं उस सांप को गले लगाऊंगा तो वो सांप मुझे डसेगा और मुझे ही दर्द होगा, है ना. तो ये डिफ्रेंसिएशन करना भी ज़रूरी होता है साथ के साथ. फिर वो कहते हैं कि समझो कि अगर तुम्हारी बुद्धि इसको नहीं भी जान पा रही कि मैं ब्रह्म कैसे हूँ, तो भी तुम ब्रह्म ही हो. नहीं जानते तो भी ब्रह्म ही हो, है ना. और अगर तुम जान गए, व्हाट इज़ द डिफरेंस जानने और ना जानने में, हो तो तुम ब्रह्म ही. जब जान जाओगे तो सारे दुखों का अंत हो जाएगा, है ना, सारी सफरिंग समाप्त हो जाएगी, सारे बंधन खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने फिर एक एग्जांपल दिया है कि जैसे अगर तुम शॉपिंग करने जाते हो और आपने कुछ सामान खरीद लिया, उसके बाद आपको रियलाइज़ हुआ अरे पर्स तो मैं लाना ही भूल गई, पैसे ही नहीं लाई, और पूरा काउंटर पे बिल विल सब निकल गया। इट कैन बी अ वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन, है ना, दुकानदार भी बोलेगा अरे देखो आई है बड़ा सज धज के और पैसे लाई नहीं है। ओके और फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि अरे आपका वो जो बैग है, फिर आप घर गए लेटेस्ट से, या थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ कि अरे वो जो पर्स था तुम्हारे पास, तुम उस दिन तुम तो आ गए दुकान से एम्बैरेस होके कि वो जो आपके लिए थैला एक और बड़ा लिया हुआ था उसमें नीचे छुपा हुआ था। कई बार उतना नहीं मिलता, सपोज छोटा सा आपने वॉलेट लिया है वो कहीं है, या पैसे थे लेकिन मिले नहीं उस समय, या आपको पता नहीं था कि पैसे पड़े हुए हैं। अरे पैसे तो थे तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे पास अगर नहीं पता था, इफ़ यू डिड नॉट नो देन वॉट हैपन्ड, यू सफर्ड, है ना, यू सफर्ड एम्बैरेसमेंट ओवर देयर। बट इफ़ यू रिमेंबर्ड दैट यू हैड द मनी विद यू, देन यू वुड नॉट हैव टू गो थ्रू दैट सफरिंग। द सेम वे ब्रह्म तुम हो, जैसे पैसे तुम्हारे पास हैं ऐसे ही ब्रह्म तुम हो, लेकिन अगर तुम नहीं जानते हो तो तुम सफ़र करोगे, जान जाओगे तो सफ़र नहीं करोगे। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस, और कोई फ़र्क नहीं है। एक बस दैट्स इट, आगे तो वो भजन है। इससे एक स्टोरी याद आई, स्टोरी भी एक्चुअली बहुत बार पहले सुनाई हुई है, कि बोलते हैं ना एक बार एक राज्य में लड़ाई हुई, तो जो दुश्मन देश है उसने आक्रमण किया उसके ऊपर, और उसमें जो राजकुमार था वो बहुत ही छोटा था, मतलब बस अभी पैदा हुआ होगा, एक महीने का होगा। तो वो ऑल दो उसको बचाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो राजकुमार गुम हो गया, वो कहीं तो दुश्मन ले गए या कोई ले गया, एक उतना बचाने के लिए आपने उसको हटाया छुपाया कहीं और लेके गए, उसमें वो नुकसान पता नहीं पड़ा वो राजकुमार कहाँ गया। तो अब बहुत साल बीत गए, बहुत कई साल बीत गए, और कई साल बीतने के बाद तो वो राजकुमार कहाँ था, वो किसी दूसरे राज्य में भिखमंगा बहन के बैठ घूम रहा था, है ना, भिखारी था, और बहुत परेशान। उसका क्या है, हर समय यही देखना कि मुझे खाना मिले या कैसे मिलेगा, तीनों टाइम का खाना जुड़ाना, वो भी भीख मांग के ही, क्योंकि भिखारियों ने उसको पाला तो भीख मांग के अपना पेट भरता था। तो एक दिन ऐसे ही सड़क के किनारे वो लेटा हुआ था और सब कपड़े वपड़े फटे हुए थे उसके, तो बाय चांस जो उस राज्य का पुराना मंत्री था वो वहाँ से पास हो रहा था, वो जा रहा था। तो उसने जब देखा उस राजकुमार को, भिखारी को वहाँ पे, और उसने राजा को भी देखा था जब राजा उस उम्र के थे, तो उसको देखकर ये हुआ कि इनकी शक्ल तो मिलती है ना, तो उसको लगा कि ये कौन है जरा मैं चेक करूं, और कपड़े भी फटे हुए थे, तो जब वो हटा के देखा तो इनकी मोहर वगैरह होती है ना कुछ ना कुछ, तो रियलाइज़ हुआ कि अरे ये तो राजकुमार है हमारे देश का। अब जैसे ही रियलाइज़ हुआ तो ऑब्वियसली उसको उठा के वो लोग ले गए और वो राजकुमार बन गया। तो उसको भिखारी से राजकुमार बनने में रियलाइजेशन होते कितनी देर लगी, एक सेकेंड ना, इन वन सेकेंड जैसे ही रियलाइज़ हुआ कि अरे भिखारी से राजकुमार हो गया, है ना। हाँ ये बात अलग है कि वो इतने साल तक अपने आप को भिखारी मान के बैठा हुआ था, अब उसमें राजकुमार के रंग ढंग आने में, इस शरीर और मन की ट्रेनिंग होने में वो समय लगेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन सारे दुख समाप्त। अभी तक तो उसको खाने के ही लाले पड़े हुए थे, अभी क्या उसको खाना खाने की चिंता है, या कपड़े पहनने की चिंता है, या कुछ और चिंता है, सारी चिंताएँ समाप्त हो गई, है ना, कुछ और वो लेवल पर हो गया। तो बिल्कुल ऐसे ही ये भी वेदांत में ही बताया जाता है कि जिस दिन, जैसे वो प्रिंस तो पहले से ही था, ऐसा तो नहीं है कि उसको प्रिंस बनाया गया, है ना, पहले से ही वो राजकुमार था, ऐसे ही तुम भी पहले से ही ब्रह्म हो, हमेशा थे, हो और रहोगे, बस रियलाइज़ करना है, रियलाइज़ करना है। और रियलाइज़ करते ही जैसे उस भिखारी की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई, तुम्हारे भी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म उस समय। So we'll end today's session with this. आप लोग अनम्यूट कर सकते हो।